हिंदी लेखन की दुनिया में सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जाना माना नाम है। प्रसिद्ध कवि, साहित्यकार और संपादक रहे सर्वेश्वर दयाल सक्सेना सितंबर में ही जन्मे और इसी माह में उन्होंने अलविदा भी कहा। उनकी कविताएं नश्तर भी हैं, आईना भी और जख्मों पर नमक भी। न्यूज़ 18 हिंदी के आज के पॉडकास्ट में मैं पूजा प्रसाद आपके लिए लाई हूँ आज उनकी 3 चुनिंदा कविताएं। उनकी पहली कविता का शीर्षक है पिछड़ा आदमी। जब सब बोलते थे वह चुप रहता था, जब सब चलते थे वह पीछे हो जाता था, जब सब खाने पर टूटते थे वह अलग बैठा टूटता रहता था, जब सब निढाल हो सो जाते थे वह शून्य में टकटकी लगाए रहता था, लेकिन जब गोली चली तब सबसे पहले वही मारा गया। उनकी दूसरी कविता जो पढ़ने जा रही हूँ वह चीनी कवि, लेखक और आलोचक लूशुन से बातचीत करती हुई गद्य शैली में लिखी हुई कविता है। इसका शीर्षक है लूशुन और चिड़िया। अपने बचपन में मैं लूशुन को अपने गांव की अमराइयों में घूमते, खलिहानों में बूढ़ों के साथ बतियाते, चिलम पीते और तैयार होते खेतों में जवानों के साथ खेलते देखता था। अब वह अक्सर घने जंगलों में घूमते मिल जाते हैं। आप यहाँ? हाँ, इस जंगल की चिड़ियों ने मुझे रोक लिया है। चिड़ियों ने? हाँ, इस जंगल में गोलियाँ चलती हैं, उनकी आवाज़ों से वे घबरा गई हैं। क्या कोई शिकारी उनके पीछे पड़ा है? शिकारियों की दिलचस्पी अब चिड़ियों में नहीं रही। यह तो बहुत अच्छी बात है, फिर तो उन्हें कोई घबराहट नहीं होनी चाहिए। घबराहट है ना, गोलियों की आवाज़ें तो आती हैं, वह भरभराकर उड़ती हैं, सारे जंगल पर वे शामियानी की तरह तन जाती हैं, फिर जब लौटती हैं और पेड़ों पर उतरती हैं तो दहशत से भरी होती हैं। क्यों? वे कहती हैं वहाँ अक्सर पेड़ों में बंधी लाशें मिलती हैं। वे इस डर से सहमी रहती हैं कि कहीं जिस पेड़ पर से वे उतर रही हैं उनसे बंधी कोई लाश ना हो। बंधी हुई लाश वाला पेड़ पेड़ नहीं रह जाता, न उनकी पत्तियाँ रह जाती हैं, वह ऐसा मानती हैं। उन पेड़ों से लपटें निकलती होती हैं और पत्तियाँ अंगारों सी धधकती रहती हैं। उन पर वह बैठ नहीं पाती, ना बसेरा ले पाती हैं। वह डर रही हैं कि कहीं एक दिन सारा जंगल जलने ना लगे। चिड़ियाँ इन लाशों को पहचानती हैं? नहीं, इन लाशों को कोई नहीं पहचानता। क्या ये बहुत साफ सुथरे मोटे ताजे लोग होते हैं? नहीं, अक्सर कमजोर और फटेहाल, लेकिन निडर और साहसी। ये पेड़ों और चिड़ियों को प्यार करते हैं और जंगल को स्वर्ग बनाने की कल्पना से भरे होते हैं। आप क्या करेंगे? मैं काफ़ी कुछ चिड़ियों की भाषा समझ गया हूँ। उन्हें समझा रहा हूँ कि वे उन बंदूक वालों पर टूट पड़ें जो आदमी को लाकर पेड़ों से बांध कर गोली मारते हैं। अगर बंधे आदमी पर गोली चलाने से पहले ही वे टूट पड़ें तो यह नौबत नहीं आएगी। लेकिन बंदूक उन पर भी तो उठ सकती है। किसी भी बंदूक में इतनी गोलियां नहीं होती जो करोड़ों का सफाया कर दें। फिर एक साथ टूटने पर बंदूक थमे हाथ कांपने लगते हैं, वह टूट कर गिर जाती हैं। मैं यहाँ चिड़ियों को यही सिखा रहा हूँ। काफ़ी चिड़ियाँ बात समझ गई हैं, पर इस जंगल में तरह तरह की चिड़ियाँ हैं, तरह तरह की उनकी भाषा है, तरह तरह के उनके रंग हैं, अलग अलग उनकी बोलियाँ हैं। सबको समझने में कुछ देर लग रही है, पर जल्दी ही मैं हर एक की आदत, हर एक की भाषा समझ जाऊँगा, फिर उन्हें समझा सकूँगा, सबको गोल बंद कर सकूँगा और भयमुक्त भी। शाम हो चुकी थी, मैं अंधेरे जंगल से बाहर आने के लिए उतावला था। मैंने उनसे जल्दी जल्दी विदा ली और जंगल के बाहर कदम बढ़ाने लगा। वह और भीतर चले जा रहे थे और तमाम चिड़ियाँ उनको घेरने लग गई थीं, घेरती जा रही थीं। किसी एक चिड़िया ने भी मेरी ओर नहीं देखा। इधर एक अरसे से मैं जंगलों की तरफ नहीं गया हूँ, लेकिन मैं अच्छी तरह जानता हूँ लूशुन वहाँ हैं और अब वह उन सबकी भाषा अच्छी तरह जान गए होंगे। कुछ ही दिनों बाद जंगलों में गोलियां चलनी बंद हो जाएंगी और चिड़ियां निर्भय चहचहाने गाने लगेंगी। दोस्तों, उनकी यह तीसरी कविता आपके रोम रोम को कपकपा देगी। इसका शीर्षक है सूरज को नहीं डूबने दूंगा। अब मैं सूरज को नहीं डूबने दूंगा। देखो, मैंने कंधे चौड़े कर लिए हैं, मुट्ठियाँ मजबूत कर ली हैं और ढलान पर एड़ियाँ जमा कर खड़ा होना मैंने सीख लिया है। घबराओ मत, मैं क्षितिज पर जा रहा हूँ। सूरज ठीक जब पहाड़ी से लुढ़कने लगेगा, मैं कंधे अड़ा दूंगा, देखना वह वहीं ठहरा होगा। अब मैं सूरज को नहीं डूबने दूंगा, अब मैं सूरज को नहीं डूबने दूंगा। मैंने सुना है उसके रथ में तुम हो, तुम्हें मैं उतार लाना चाहता हूँ। तुम जो स्वाधीनता की प्रतिमा हो, तुम जो साहस की मूर्ति हो, तुम जो धरती का सुख हो, तुम जो कालातीत प्यार हो, तुम जो मेरी धमनी का प्रवाह हो, तुम जो मेरी चेतना का विस्तार हो, तुम्हें मैं उस रथ से उतार लाना चाहता हूँ। रथ के घोड़े आग उगलते रहे, अब पहिए टस से मस नहीं होंगे, मैंने अपने कंधे चौड़े कर लिए हैं। कौन रोकेगा तुम्हें, कौन रोकेगा तुम्हें, मैंने धरती बड़ी कर ली है। अन्न की सुनहरी बालियों से मैं तुम्हें सजाऊंगा, मैंने सीना खोल लिया है, प्यार के गीतों में मैं तुम्हें गाऊंगा। मैंने दृष्टि बड़ी कर ली है, हर आँखों में तुम्हें सपनों सा फहराऊंगा। सूरज जाएगा भी तो कहाँ, उसे यहीं रहना होगा। सूरज जाएगा भी तो कहाँ, उसे यहीं रहना होगा। यहीं हमारी सांसों में, हमारी रगों में, हमारे संकल्पों में, हमारे रतजगों में। तुम उदास मत हो, अब मैं किसी भी सूरज को नहीं डूबने दूंगा। कविताओं के इस सफ़र में आज सर्वेश्वर जी के साथ आपको छोड़कर मैं पूजा प्रसाद विदा लेती हूँ, इस वादे के साथ कि जल्द ही एक और रचनाकार के साथ आपसे मिलूंगी। नमस्कार।